أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ البینہ تمام کی تھی. آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ الزلزال سے، پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدائے رحمان رحیم. آیت نمبر ایک، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب لرزا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی. زلزلت، اردو میں ہم لفظ زلزلہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہمارے لیے واضح ہے. زلزلت الارض، جب زمین کو ایک زلزلے کے ذریعے لرزا دیا جائے گا، اور یہاں مراد قیامت جب آئے گی تو اس وقت آنے والا زلزلہ ہے، جیسے کہ آنے والی آیات خود اس پر گواہی دے رہی ہیں. جب زمین ایک لرزش سے لرزا کر رکھ دی جائے گی. دو، وأخرجت الأرض أثقالها، اور نکال دے گی، خارج کر دے گی زمین اپنے اثقال کو، اپنے وزنوں کو، یعنی جو کچھ زمین کے سینے کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی. اس سے مراد مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا قبروں سے، یا زمین کے اندر سے دوبارہ نکل کر آ جانا بھی ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ زمین نہ صرف یہ کہ مادی چیزیں جو اس کے اندر تھی انہیں باہر نکال دے گی، بلکہ ایک اور عجیب منظر جو اس دن دیکھنے میں آئے گا وہ یہ ہے کہ زمین نے اپنے سینے کے اندر جو خبریں محفوظ کر رکھی تھی، کہ مثلا انسانوں نے زمین کے اوپر کیا کیا کام کیے، تو وہ زمین وہ بھی اپنے اندر سے بول کر ان خبروں کا بھی اظہار کر دے گی، بتائے گی. یہ آگے آ جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. تین، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے، کس کو؟ زمین کو. اتنا شدید زلزلہ آئے گا کہ انسان گھبرا اٹھے گا. اور یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو زلزلے تو انسان نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے. یہ جو الفاظ ہے وقال الانسان ما لها، اگر ان الفاظ بولنے والے کے جذبات پر اور اس کی کیفیت کو تصور کرنے کی کوشش کی جائے، تو انسان جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ اس طرح کا زلزلہ انسانوں نے پہلے مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس زمانے میں جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا آج کی نسبت انسان اور بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوگا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ جو زلزلے آتے ہیں, زلزلے آنے کی وجہ سے کئی عمارتیں بعض اوقات گر جاتی ہیں اور بہت سارا جانی نقصان ہو جاتا ہے. تو عمارتیں بنانے کے ماہرین ریسرچ کی حالت میں کہ ایسا کیا کیا جائے, ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہو, عمارتیں کس طرح سے بنائی جائیں کہ یہ جو زلزلے آنے کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا ہے اور مالی نقصان ہوتا ہے یہ نہ ہو. شاید آپ نے, اگر آپ ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں, تو آپ نے آئندہ زمانے میں جو بنائی جانے والی عمارتیں ہیں جو زلزلے کے مقابلے میں مقاوم ہوں گی, یعنی زلزلہ جتنا بھی شدید آ جائے ان پہ اثر نہیں کرے گا, وہ عمارتیں اپنی جگہ کھڑی رہیں گی. بعض آئندہ کے بارے میں جو آئندہ کی بلڈنگز عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی کے بارے میں اس قسم کی چیزیں ویڈیوز بعض دفعہ دکھائی دیتی ہیں, تو ان میں کیا بتایا گیا کہ آنے والے زمانے میں ایسی عمارتیں بنا دی جائیں گی کہ جو زمین کے ہلنے سے خود نہیں ہلیں گی, یعنی ان کی بیس ایسی ہوگی, ان کی بنیاد ایسی ہوگی زمین کے اوپر والی جگہ کہ اگر زمین ہلے تو وہ تو ہلتی رہے لیکن جو اس کے اوپر عمارت کھڑی ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہے. آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو انسان جو اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے گویا کے زلزلوں پر قابو پا چکا ہوگا, قابو پا چکا ہونے سے کیا مراد ہے, یعنی زلزلے جو نقصان کرتے تھے اب وہ نقصان نہیں ہوا کرتے ہوں گے اس زمانے میں, اور انسان مطمئن ہوگا کہ یہ جو ہماری بلڈنگز ہیں, ہمارے مکانات ہیں, ہماری عمارتیں ہیں, یہ زلزلے کے آنے سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ ٹیکنالوجی بھی اس کے مقابلے میں فیل ہو جائے گی. وہ عمارتیں کہ جن کے بارے میں انسان سمجھتا ہوگا کہ اب ان کو کوئی زلزلہ انہیں نہیں گرا سکتا اور ہم محفوظ ہیں, وہ بھی گرنے لگے گی. اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی, اس کی لرزش اتنی شدید ہوگی, وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی عمارتیں بنانے کی اسے وہ فیل کر دے گا. اب جب انسان جو مطمئن تھا کہ زلزلہ آئے تو ہماری عمارتیں نہیں ٹوٹیں گی, اب جب اس زلزلے کی شدت دیکھے گا زمین کی تو تعجب سے اور اس ایک عجیب و غریب کیفیت جو اس پر طاری ہوگی وہ پکار اٹھے گا, وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا, اتنا شدید زلزلہ اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو تھی اور ہم جس پر انحصار کر رہے تھے کہ ان عمارتوں کو کچھ نہ ہوگا, یہ زلزلہ ایسی تباہی مچا رہا ہے. تو یہ حالت تعجب اور ایک عجیب سی کیفیت جو اس زلزلے کو دیکھ کر اس حالت میں طاری ہوگی, اس حالت میں یہ الفاظ گویا کہ انسانوں کے منہ سے نکلیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانے میں قوم عاد اور قوم سمود اپنی بنائی ہوئی مضبوط عمارتوں پر فخر کیا کرتے تھے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو ساری کی ساری اس زمانے کی ان کی ٹیکنالوجی کنسٹرکشن کی جو ان کی مثلا انجینئرنگ تھی یا جو کچھ بھی تھا سب بیکار ہو گیا. تو جتنا بھی انسان ترقی کر لے, آج آپ دیکھ لیجئے دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک, ایک ملک میں اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جناب سونامی کا خطرہ ہے تو ٹیکنالوجی بھول جاتی ہے, لوگ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ایک انتہائی ترقی یافتہ اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ملک میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب فلان سمندری طوفان آنے والا ہے, گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور جب وہ پھر شہروں میں گھستی ہے وہ ہوا تو وہ کیا کام کرتی ہے, وہ ایک جھلک دکھا دیتی ہے انسان کو کہ اگر خداوند عالم کا حکم آ جائے تو یہی ہوائیں کہ جو تمہیں خوشخبریاں دیتی ہیں بارشوں کی और गर्मी में तुम्हारे लिए ठंडक का पैगाम होती हैं। यही हवाएं जो बादलों को लेकर आती हैं ताकि ज़मीन पर पानी बरसे और फसलें उगें, इन्हीं हवाओं को खुदा अगर हुक्म दे दे तो ये इंसान के लिए हलाकत का पैगाम बन सकती है, अज़ाब का पैगाम बन सकती है। तो ये तस्वीर है कि जो इस सूरह मुबारक ज़िलज़ाल में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की आमद और ये इंसान को बेदार करने के लिए ज़ाहिर है कुरान मजीद की आयात याद दहानी है, बेदारी का पैगाम है, ये तस्वीर दिखाई जा रही है। और इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। चार, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बार रहा, उस दिन यानी जिस दिन ये हादसा ये जलजला पेश आएगा, तुहद्दिसु जमीन बोलेगी, तुहद्दिसु हदीस से है यानी बोलना, क्या बोलेगी, अखबार रहा अपनी अखबार, अखबार खबर की जमा है, अपनी खबरें सुनाएगी, बोल कर जमीन अपनी खबरें सुनाएगी। अब जो जलजले से ताज्जुब में था इंसान कि ये क्या हो गया जमीन को, मेरी सारी टेक्नोलॉजी इसके सामने फेल हो गई है, उसको एक और अजीब व गरीब चीज का सामना करना पड़ेगा। और वो क्या कि वो देखेगा कि जमीन ने सब कुछ, सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड बातों का, आमाल का अपने अंदर महफूज किया हुआ था, और वो अल्लाह की बारगाह में रिपोर्ट करेगी। और आज तो शायद, जैसे कि मैं अर्ज करूंगा, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब अल्लाह का नबी ये आयात अपने जमाने के लोगों को सुना रहा था सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो लोग गुज़श्ता अंबिया की तरह मजाक उड़ाते थे, इन बातों का मजाक उड़ाते थे। क्यों? इसलिए कि जाहिल थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ अरसे के बाद, चंद सौ साल के बाद ऐसा जमाना आ जाएगा कि इसी जमीन के अंदर से निकली हुई चीजें बोलेंगी। आपका मोबाइल बोलता है, आपका टेलीविजन बोलता है, दूसरी मुख्तलिफ गैजेट्स जो आपके पास हैं रिकॉर्ड करती हैं, बोलती हैं, तस्वीर भी दिखा देती हैं। ये सलाहियत, तवज्जो फरमाइए, इन चीजों के अंदर किसी साइंटिस्ट ने पैदा की है या नहीं? ये अजल से, इब्तिदा से जमीन के अंदर से निकलने वाली वो चीजें जिनको जोड़कर मोबाइल मसलन बना दिया जाता है या टेलीविजन बना दिया जाता है, ये सिफात इन जमीन के अंदर मौजूद एलिमेंट्स में, अनासिर में, इस मादे में अजल से मौजूद थी। और साइंसदान आता है, इसको डिस्कवर करता है, कशफ करता है, और फिर इन टुकड़ों को, मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर एक चीज बना के सामने रख देता है। ये सलाहियत अजल से मौजूद थी। वो छोटी सी मसलन चिप के जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा मसलन फीड किया जा सकता है और महफूज किया जा सकता है, आजकल आप हार्ड डिस्क देखते हैं, या आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माना गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो साइज़ छोटा होता जा रहा है, लेकिन वो जो ताकत है, कैपेसिटी है, सलाहियत है डेटा को अपने अंदर महफूज रखने की, वो और से और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर आप चंद साल पीछे चले जाएँ कि जब इब्तदा में कंप्यूटर्स मसलन आए थे मार्केट में और इस्तेमाल होने शुरू हुए थे, उस वक्त की कितनी कैपेसिटी हुआ करती थी एक कंप्यूटर के अंदर, और आज एक छोटे से मोबाइल के अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है डेटा को महफूज करने की। और ये आज आप इसका बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, गूगल है, फेसबुक है, मिसाल के तौर पर ये सोशल मीडिया पर जो जायंट्स हैं, ये बड़े आराम से आपकी जेब में जो मोबाइल पड़ा है या आपके बिस्तर में साइड टेबल पर आपके मोबाइल पड़ा हुआ है, आपको पता भी ना हो और आप जो कुछ बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहा हो और वहाँ पहुँचा रहा हो कि जहाँ आपको पता भी नहीं है, ये डेटा वहाँ पर पहुँच रहा हो, वीडियो वहाँ पर पहुँच रही हो आपको पता भी ना हो, तवज्जो इस बात पर करें कि ये सलाहियत इसी जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों के अंदर मौजूद थी। साइंस ने रिसर्च की, साइंसदानों ने चीजों को डिस्कवर किया, मुख्तलिफ फिजिकल कवानीन, इलेक्ट्रॉनिक्स के कवानीन ये डिस्कवर कर लिए और उसके बाद इनको जोड़कर ये चीजें बना दी। इनके अंदर, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों में ये सिफात किसी साइंसदान ने न पैदा की हैं न पैदा कर सकता है। ये उसी का काम है जो अल्लदी कद्दर फहदा, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अपने रब आला की तस्बीह कर, उसे हर ऐब से पाक करार दे। कौन सा रब? अल्लदी खलका, वो जिसने खल्क किया, फसव्वा और सही सही खल्क किया, एतदाल में खल्क किया, जैसा होना चाहिए था सवार के खल्क किया। वल्लदी कद्दर फहदा, सूरतुल आला में हम इस पर बात कर चुके। और वो रब के जिसने कद्दर, हर चीज के अंदर क्या सलाहियत होगी, कितनी मिकदार में होगी, रख दी, फहदा, और उसको गाइड भी कर दिया कि तुझे किस किस्म के कवानीन में किस तरह का रवैया दिखाना, कैसे बिहेव करना तुझे। वो चीजें जिनको हम मादी चीजें समझते हैं, ये मादी कायनात, ये सारी की सारी उन्हीं कवानीन की पाबंद है जो इसके खालिक ने, अल्लदी कद्दरा, जिसने अंदाजे मकदारें मुअय्यन कर दी, और फहदा और हिदायत भी हर चीज की उस रब अकदस ने कर दी। तो मैंने अर्ज किया कि जिस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा था, शायद बल्कि हतमन, जैसा कि हम पढ़ते, वो जुहला इन बातों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज का जो इंसान का इल्म है, और अभी भी इंसान बहुत पीछे है, खुदा जाने क्या कुछ इंतजार में है इंसान के, किस मकाम पर साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसान पहुंच जाएगा आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद, कि वो हमारे जमाने के लोगों पर हंस रहे होंगे। मिसाल के तौर पे इनको रिकॉर्ड करने के लिए सामने कैमरा लगाना पड़ता था, इतना बड़ा कैमरा सामने रख के बैठे होते थे, इनको फलान करना होता था, ये करना होता था, इतने जाहिल थे इनके पास ये टेक्नोलॉजी जो उस जमाने में होगी। जैसे आज से 100 साल पहले के इंसान को तसव्वुर करके हम कहते हैं कितने बेचारे थे, तो 100 साल बाद हम पर भी वो नस्लें इसी तरह हंस रही होंगी, मसलन कह रही होंगी कि इनके पास इतने ये जाहिल थे, इनसे रोड एक्सीडेंट कंट्रोल नहीं होते थे, रोड एक्सीडेंट से मर जाया करते थे, इतनी जानें जाया होती थी, इनकी जहालत वजह थी। मिसाल के तौर पे इनके पास कैंसर का इलाज नहीं था, मिसाल के तौर पे इनके पास एड्स का इलाज नहीं था, या फर्ज करें कुछ अरसे के बाद इसी कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस है, जब इसकी कोई भी दवा या कोई भी चीज मिसाल के तौर पर डिस्कवर हो जाती है, मौजूद है, मौजूद है, लेकिन डिस्कवर्ड नहीं है, तो जब वो डिस्कवर हो जाएगी तो लोग कहेंगे, अफसोस करेंगे कि बेचारों को अगर पहले पता चल जाता तो इतनी कीमती जाने मिसाल के तौर पे जाया ना होती। तो इंसान तरक्की की हालत में है, लेकिन आज जिस मकाम पे इंसान का इल्म पहुंच चुका है, बआसानी हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जमीन कैसे बताएगी। जैसे हमारा मोबाइल बोलता है, जैसे कोई अगर बंदा मिसाल के तौर पे कत्ल कर दिया जाए तो उसका मोबाइल वगैरह पुलिस कब्जे में ले लेता ताकि उसके डेटा से पता चले, उसके कॉल रिकॉर्ड को देखा जाता है, फलान को देखा जाता है, जो जो राबते किए उसने मुख्तलिफ तरीकों से पता चल जाता है ताकि सुराग। तो आज का इंसान, कि मैंने अर्ज किया अभी भी इंसान का बचपना है, बहुत आगे जाना इंसान ने, तो वो जो इंसान का खालिक है, ये इंसान आज इतना कुछ कर सकता है इसी मादे के जरिए, बहुत सारी चीज़ों को, बातों को, तस्वीरों को देख सकता है, दोबारा सुन सकता है, और जहाँ पहुँचना चाहता है, जो चीज़ जानना चाहता है उसे जान लेता है। तो वो कि जो इस मादे का और इस इंसान का खालिक है, और इन तमाम सलाहियात, इन तमाम क्वालिटीज़ का खालिक है जो इन चीज़ों के अंदर पाई जाती हैं, इसमें तो ताज्जुब की बात ही कोई नहीं कि ये ज़मीन उसके हुक्म से सारी की सारी बातें महफूज कर रही हो, कर रही हो कहना भी ठीक नहीं है, कर रही है। अगर मैं तन्हाई में बैठकर भी किसी कमरे में दूर उफ्तादा कोई गुनाह करता हूँ और समझता हूँ कि यहाँ कोई नहीं है, दीवारें हैं, ये ज़मीन है, और अगर हमने कोई कालीन रखा हुआ है तो वो भी ज़मीन से ही निकला है, सब चीज़ें ज़मीन है, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो जब खुदा हुक्म देगा क़यामत के दिन तो ये ज़मीन बोलेगी, यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन वो अपने हालात बयान करेगी। 5 क्यों बयान करेगी? بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، آپ کا رب اسے. اوحا وحی سے ہے، اور وحی کا اصل معنی ہے خفیہ پیغام یا خفیہ اشارہ، یہ اس کا اصل معنی ہے. اور پھر وحی کے لفظ کے مختلف استعمالات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کی. اس وحی سے کیا مراد ہے؟ اس وحی سے مراد ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بنا کر اس کے اندر جو سافٹ ویئر گویا کہ انسٹال کر دیا ہے کہ اس نے پھلوں کا رس چوسنا ہے، پھولوں کا رس چوسنا ہے، اور شہد بنانا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے، وہ وحی ہے. اسی طرح وہ وحی ہے کہ جو انبیاء کی طرف آتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، یا انبیاء کے قلب پر نازل ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک بنیادی معنی ہوتا ہے، ہم کئی بار عرض کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو تو بعض اوقات انسان مکس اپ کر دیتا ہے اور معنی کو اور جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات فتنہ کرنے والے اور گمراہ کن باتیں کرنے والے لوگ عوام کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر الفاظ سے کھیلتے ہیں. عوام کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ کھیلتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی باتیں عوام کے ذہنوں میں ڈال سکے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی. اب یہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ اللہ زمین کو حکم کرے گا کہ اپنے راز اگل، جو کچھ تیرے اندر ہے نکال، اور جو کچھ باتیں تیرے پاس محفوظ ہیں ان انسانوں کی، جتنا ڈیٹا ہے، جتنا ریکارڈ ہے، اس کو بتا. تو وہ بولے گی جیسے موبائل بول پڑتا ہے. کسی کو تعجب ہوتا ہے کہ موبائل کیسے بول رہا ہے؟ ہاں، 100 سال پہلے کے بندے کو موبائل کے پاس آپ لا کے بٹھا دیں اور یہ بولے بھی اور تصویر بھی دکھائے، اسے تعجب ہوگا. لیکن ہمیں تو اس بات پر تعجب ہوگا کہ اسے تعجب کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم اس سے مانوس ہیں. تو زمین بھی اپنے رب کے حکم سے بولے گی اور بتائے گی کہ میری پشت پر ان انسانوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھی. 6. اور کیا ہوگا اس دن؟ یومئذن یصدر الناس اشتاتن، اس دن لوگوں کو لایا جائے گا، لوگ آئیں گے اشتاتن، گروہ گروہ بن کر، مختلف گروہ بن کر. اب یہ قرآن میں چند جگہوں پہ ذکر آیا. ان گروہوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ہر علاقے کے برے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے گناہوں کی بنیاد پر گروپس بنا دیے جائیں، کون لوگ اس گناہ میں زیادہ انوالو تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن لوگوں کو، لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے. کس لیے آئیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، ویڈیو آڈیو ان کی ریکارڈنگز، مثلا آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ان کو سنائی جائے کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا، تم سمجھتے تھے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم سمجھتے تھے تم بڑے تیز ہو، تم نے بڑا چھپ کے کیا، لیکن ہمارے پاس ہر چیز محفوظ تھی. اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. اور پھر کیا ہوگا؟ کتنا دقیق، کتنا باریک بینی والا نظام ہے اللہ کا چیزوں کو محفوظ رکھنے کا. فرمایا آیت نمبر 7 میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی جس نے خیر، اچھائی کی ہوگی، يَرَهُ، اس کو دیکھے گا. یعنی ایک دفعہ اللہ انسان کو ہر چیز سامنے اس کے دکھا دے گا، پورا اس کا اعمال نامہ، چاہے اچھائیاں ہوں چھوٹی سے چھوٹی، رائی کے دانے کے برابر، الیکٹرون کے برابر، مثال کے طور پر. ये मिथकाल दर्रतिन, कुरान के नजूल के ज़माने में ये लफ्ज़ छोटी तरीन हकीर तरीन चीज़ बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसके बराबर भी अगर किसी ने भलाई की होगी वो भी देखेगा। और आयत नंबर 8 जो आखिरी आयत है, वमन यअमल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरह, और जिसने राई के दाने के बराबर भी शर, खैर का अपोजिट खैर की जिद, शर यानी बुराई, शर यानी गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी, जिसने राई के दाने के बराबर भी जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसको देखेगा। और कुरान मजीद में इससे पहले गुजर चुका कि जब गुनाहगार अपने आमाल नामों को देखेंगे तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, और वो कहेंगे ये भी लिखा हुआ है, ये भी गुनाह किया था मैंने, इतना छोटा समझा था मैं इसको, इस किताब ने इस आमाल नामे में इसे भी नोट किया हुआ है। मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कहेंगे ये कैसी किताब हमें पकड़ाई गई है, ये कैसा एक्यूरेट डेटा हमारा रिकॉर्ड किया गया और हमें बताया जा रहा है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ना कोई छोटी चीज छोड़ी है इसने ना कोई बड़ी चीज छोड़ी है, इल्ला अहसा, सब चीजें गिन के रखी हुई। फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरह, तो जिसने जर्रा बराबर भी खैर की होगी अच्छाई की होगी वो भी देखेगा। वमन यअमल, ये यअमल अमल है, जिसने राई बराबर भी जर्रा बराबर भी शर किया होगा बुराई की होगी वो भी देखेगा कि मेरे पास ये है। फिर जो कुरान बताता है आमाल के वजन किए जाएंगे, दीगर चीजें जो प्रोसेस क़यामत के दिन का बताया गया, फिर अल्लाह की मर्जी के उसका शुमार बख्श दिए जाने वालों में करे या उसका शुमार जहन्नम में जाने वालों में करे, एक दफा दिखाएगा हर एक को कि तुमने क्या आमाल किए थे, तो हम में से कौन है कि जो क़यामत के दिन अपने आमाल नामे में बुराई देखना चाहेगा, जब वापस आकर तौबा करने की और अपनी इस्लाह करने की किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। हम सोचे उस दिन हम किस किस किस्म के आमाल चाहेंगे कि हमारे आमाल नामे में नजर आए और चमके और बायस फख्र हो, बायस इज्जत हो वो आमाल, और कौन से आमाल हम कभी नहीं चाहेंगे, कर चुके हैं, करते हैं, छोड़ने का इरादा भी नहीं है, लेकिन कुरान चाहता है हम तसव्वुर करें कौन से आमाल है तुम्हारे जो तुम अपने आमाल नामे में नहीं देखना चाहोगे, तुम्हारा जी नहीं चाहेगा कि इसका किसी को पता चले, छोड़ दो उनको। ये आयात इसीलिए, इसलिए नहीं कि पढ़ के सवाब लो और रूटीन वही रहे। कुरान इंसान की इस्लाह के लिए आया है। सूरत ज़िलज़ाल यहाँ पर तमाम होती है, इसके बाद अगली सूरा है सूरतुल आदियात। पहले इसकी तिलावत करते हैं और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير। سورة العاديات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ آیت نمبر ایک، بنام خدا رحمان رحیم۔ آیت نمبر ایک، والعاديات ذبحا، قسم ہے उनकी जो हांपते हुए दौड़ते हैं, वो घोड़े कि जब उन्हें दौड़ाया जाता है तेजी के साथ, खास तौर पर वो घोड़े जो किसी लश्कर में शामिल होते हैं, और वो लश्कर अचानक हमला आवर होने के लिए गोया के उन घोड़ों को दौड़ाना शुरू करता है, तो आपने देखा होगा कि जब जानवर वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते हांपने लगता है, जोर जोर से सांस लेता है, तो उस वक्त की कसम खाई जा रही है। और ये कसम खाना उस वक्त की अहमियत की तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए, क्यों भला? इसलिए कि जब लश्कर हमला आवर होते हैं तो तारीख बदल जाती है, हुक्मरान गुलाम बना लिए जाते हैं, और मुमकिन है गुलाम हुक्मरान बन जाए। जब जंग होती है, जब घोड़ों पर सवार लोग हमला करते हैं और दुश्मनों की कत्लो गारत करते हैं, उन पर गलबा पा लेते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, तारीखी मौका होता है, सरनविश्त साज मौका होता है। तो उस मौके की तस्वीर हमला करते हुए लश्कर के घोड़ों की कसम खाई जा रही है। अब सूरतुल आदियात तवज्जो फरमाए, अक्सर के नजदीक ये सूरा सूरह आदियात मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है रसूलुल्लाह पर, और बाज के नजदीक कि जिनकी तादाद कम है, ये सूरा मदीना में नाजिल हुई। और मदीना के नजूल के बारे में जो शान नजूल बयान किया जाता है वो ये कि गजवाए ज़ात सलासिल एक जंग थी कि जिसमें रसूलुल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सरबरा बनाकर भेजा था, और अल्लाह ने फतह दी, और उनकी वापसी से पहले पहले ये सूरा, उस लश्कर की वापसी से पहले पहले ये सूरा नाजिल हो गई इस रिवायत के मुताबिक। लेकिन जैसे हमने अर्ज़ किया कि जो ज़्यादा मशहूर है और वो रिवायत, उसके मुताबिक सूरतुल आदियात उन सूरतों में से है जो बिल्कुल इब्तिदा में रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी। वल आदियात दबहन, कसम है उनकी यानी उन घोड़ों की जो हांपते हुए दौड़ते हैं, यानी दौड़ रहे होते हैं और हांप रहे होते हैं, इसलिए कि बड़ा अहम मौका होता है, सरपट दौड़ाया जा रहा होता है उनको, और उसकी वजह से वो हांप रहे होते। आयत नंबर 2, फलमूरियाति कदहन, फिर ठोकरों से चिंगारियां उड़ाते, घोड़ों के सूंडों के नीचे वो लोहे के नाल लगाए जाते हैं, और वो जब फिर पत्थरों पर लगते हैं चिंगारियां भी उड़ती हैं उससे, तो वो खास उस वक्त की तरफ तवज्जो कराई जा रही है, उसकी तस्वीर कशी की जा रही है। फिर ठोकरों से चिंगारियां उड़ाते हैं। 3, फल मुगीरात सुबहन, फिर सुबह सवेरे के जो अक्सर लोगों की गफलत का वक्त होता है, धावा बोल देते हैं, मुगीरात ये हमला करने से है, और हमलावर क्या करते हैं, गारत कर देते हैं चीजों को। फल मुगीरात सुबहन, सुबह के वक्त हमला कर हमला आवर होते हैं, यानी इसी सरपट दौड़ते हुए चिंगारियां उड़ाते हुए हांफते हुए, अल सुबह के जब लोग सो रहे होते हैं, ये जाकर उन पर हमला आवर हो जाते। 4, फअसर नबिही नकअन, तो उससे गुबार उड़ाते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां लोग मिसाल के तौर पे गफलत में पड़े हुए या सो रहे हैं, हर चीज पुरसकून है, ये हमलावर लश्कर अचानक जाकर धावा बोलता है और गर्द गुबार उड़ना शुरू हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। फअसरना बिही नकअन, तो उससे गुबार उड़ाते हैं। 5, फवसतना बिही जमअन, और वो लश्कर में एक जम इज्तिमा, एक लश्कर यानी जिस पर वो हमलावर हो रहे हैं उसके वसत में पहुंच जाते, यानी कबल इसके कि वो उनको पता चले और वो होशियार हो, उनके पता चलते चलते, उनके उठते उठते ये उनके वसत में पहुंच जाते हैं और गोया के गलबा पा लिया इन्होंने। ये तस्वीर बनाई अल्लाह तबारक व तआला ने इस इन घोड़ों की कसम खाकर। हमने शुरू में भी आज किया कि जब कसम खाई जाती है उस पर गौर करना मुराद होता है, और कसम खाने वाला कह रहा होता है कि जिसकी मैं कसम खा रहा हूं, गोया कि वो कह रहा होता है कि ये चीज गवाह है अगली बात की जो मैं कर रहा हूं, उस पर मैं इसको गवाह बना रहा हूं। और हमने अर्ज किया इसका माना आपकी खिदमत में, ये कसमें घोड़ों का ये हमला करना और चिंगारियां उड़ाना और हांपना और वसत दुश्मन के लश्करों के वसत में पहुंच जाना, ये बड़ा सरनविश्त साज वक्त होता है, तारीख का रुख बदल जाता है। जो पहले सरदार और हुक्मरान होते हैं उनका उनकी हुक्मरानियां खाक में मिला दी जाती, और लोग इक्तदार को हाथ में ले लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। और हमारे जमाने में तो जाहिर है कि अभी घोड़ों के साथ वो इस्तेमाल नहीं रह गया, और चीजें आ गई, लेकिन जिस जमाने में ये आयत उतरी है उस जमाने के लोगों को अच्छी तरह अंदाजा था कि जब इस तरह हमला होता है तो फिर अंजाम क्या होता है, कैसे तारीख का रुख बदल जाता है, और जंगों की तारीख इस बात पर गवाह है। तो इन सब चीजों को गवाह बनाकर ये कहा जा रहा है इंसान से कि ये जिस दुनिया के पीछे, जिस माल की मोहब्बत में तू अपने रब को भूला हुआ है, ये तो कभी भी जा सकता है, ये तो कभी भी जा सकता है। और अगर इस सूरा को हम मक्की लें, जैसा कि अर्ज किया मक्का में नाजिल होने वाली, तो गोया पहले से मक्का के मुशरिकीन को खबरदार किया जा रहा है कि कुछ ही अरसे बाद तुम पर गलबा पा लिया जाएगा और लश्कर इस्लाम उसके सामने तुम टिक नहीं सकोगे, और ये चीजें जिनसे तुम्हें, जिस माल से तुम्हें मोहब्बत है और जिसकी वजह से तुम अपने रब की तरफ आने से गुरेजा हो, ये चला जाएगा तुम्हारे पास से, ये आरजी है। और हर माल से मोहब्बत करने वाले के लिए ये पैगाम है कि ना माल दुनिया का दायमी है, ना इक्तदार दुनिया का दायमी है, ये सब का सब जाने वाला है, और अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना, जैसे कि इन आयात में आ जाएगा कि जब कब्रों से निकलोगे तो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हर उस चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हत्ता जो तुम्हारे दिलों के राज हैं वो भी निकल के सामने आ जाएंगे, और उस दिन तुम्हारा जो रब है उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा उसे कितनी ज्यादा खबर थी तुम्हारे बाहर की भी और तुम्हारे दिलों के अंदर के छुपे हुए राजों की भी और तुम्हारी नियतों की भी जो तुम काम किया करते थे। तवज्जो फरमाइए, कसम है उनकी जो हांपते हुए दौड़ते हैं, फिर ठोकरों से चिंगारियां उड़ाते हैं, फिर सुबह सवेरे धावा बोलते हैं यानी हमला कर देते हैं, चार फिर उससे गुबार उड़ाते हैं, पांच फिर उस लश्कर के वसत में घुस जाते हैं। आयत नंबर छह, अब जिस बात पर ये कसमें खाई गई है वो बताई जा रही है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, मैंने इशारा कर दिया, पहले से इशारा कर चुका, बेशक यकीनन इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। क्यों नाशुक्रा है? कि जो दे रहा है उसको नाराज करता है, जिसने नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करने की बजाय, उसकी इताअत करने की बजाय इन्हीं नेमतों से उसकी नाफरमानी करता है। आप देख लें मुआशरे को, दुनिया को देख लें, क्या हो रहा है दुनिया में, किसका दिया हुआ है हमारे पास, जिंदगी किसकी दी हुई है, माल किसका दिया हुआ है, जमीन से उगने वाला रिज़्क किसका दिया हुआ है, आसमान से नाजिल होने वाला पानी, दीगर चीजें, ऑक्सीजन वगैरह 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 किसने दी हुई है, और उसको देखे और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए इंसान को देखे। अगर हमें कोई इंसान किसी मुश्किल वक्त में कुछ रुपए दे दे, इससे हमारी मुश्किल हल हो जाए, हम समझते हैं हमारे ऊपर एहसान का बोझ आ गया, लेकिन अल्लाह के बारे में हम कैसे हैं? तो इसी बात को खुदाबंद अलमिया फरमा रहे, इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। साथ, और ये नहीं कि इस ना अपने नाशुक्रे होने का उसको पता नहीं, वह इन्नहु अला दालिका लशहीद, और बेशक वो खुद इस पर गवाह है। अगर शक हो हमें, एक दफा आंखें बंद करके अपने अंदर चले जाए, कितना खुदा का, खुदा की नेमतों से इस्तफादा कर रहे हैं और कितना वक्त उसको हम भुलाकर जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि उसकी नाफरमानी करते हैं, दीदा दानिस्ता उसकी हुदूद को फलांग जाते हैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपने बनाए हुए अहदाफ तक पहुंचने के लिए। वह इन्नहु अला दालिका लशहीद, ऐसा नहीं कि इंसान को पता नहीं है, इंसान गवाह है कि वो अल्लाह का नाशुक्र है। जिसका खाता है उसकी नाफरमानी करता है, जिसके बगैर उसका वजूद ही बाकी नहीं रहता उसकी नाफरमानी करता है, इससे बड़ा नाशुक्रा कौन होगा, और वो खुद इस पर गवाह है। आठ, आयत नंबर आठ में एक और इंसान की नफ्सियात में एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा, जो इंसान को अक्सर खराब कर देती। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, और बेशक वो माल की मोहब्बत में शदीद है, शिद्दत से उसे माल से मोहब्बत है। यहां जो आयत में लफ्ज आया वो है खैर, और खैर की एक बहुत बड़ी अलामत चूंकि माल दुनिया होता है, जिसके पास माल ना हो तो लोग कहते हैं इसके हाथ पल्ले कुछ है ही नहीं, और जिसके पास माल हो, अरबी जुबान में लफ्ज खैर माल के लिए इस्तेमाल होता है। सूरह बकरा में वसीयत की जो आयत आई थी वहां पर यह था, कुतिब अलैकुम इदा हदर अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन अल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक्रबीन, कि तुम में से जब किसी को मौत जिसकी हाजिर हो जाए, करीब आ जाए, तो वाजिब है कि वो वसीयत करे इन तरक खैरन, अगर कोई खैर छोड़ के जा रहा हो, खैर यानी क्या, यानी माल, यानी कोई चीज छोड़ के जा रहा हो उसके बारे में वसीयत करे। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ, पस खैर से यहां मुराद हर खैर भी ली जा सकती है, इंसान अपने लिए भलाई चाहता है, सेहत ली जा सकती है, सब कुछ, लेकिन ज्यादा बड़ी चीज कि जिससे इंसान, जिसकी मोहब्बत में इंसान बड़े बड़े गुनाह करता है, वो क्या है, माल है, चूंकि चाहता है मेरे, उसको कहता है कि मेरे पास माल ज्यादा होगा तो फिर हर चीज मेरे पास है, बाकी सारी चीजें खैर भी मैं इकट्ठी कर लूंगा, असल खैर क्या है, माल है। आज आप दुनिया में देख लें इंसान किसके लिए दौड़ धूप करता है सारा दिन, इसी माल के लिए। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, और बेशक वो माल की मोहब्बत में लशदीद, ताकीद के साथ अल्लाह फरमा रहा है, बहुत शदीद मोहब्बत करता है माल से। कितने लोग माल के लिए दीन बेच देते हैं, कितने लोग माल के लिए अल्लाह के नेक बंदों को कत्ल कर देते हैं, हुक्मरानों का माल खाने के लिए गलत फैसले कर देते हैं, गलत केस पर गलत सजाएं दे देते हैं पैसे खाने के लिए। अगर जज करप्शन करते हैं, क्या क्या लेते हैं उसके बदले में, माल लेते हैं। अगर मसलन पुलिस वाले करप्शन करते हैं, तहकीकात में रद्दो बदल कर देते हैं, किस लिए करते हैं, माल खाने के लिए करते हैं। अगर वकील जानते बूझते हुए कि ये कातिल है, उसको छुड़वाने के लिए अदालत में जाकर पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं, किस लिए, चूंकि माल खाना होता है। वह इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और यहां पर मैं क्या करता हूं कि ये कुरान के अहकाम सब के लिए, इसमें ये नहीं कि कोई कहे मेरा मसलक जो है उसके साथ अगर तुम्हारा ताल्लुक है ना, उसको तो ये माफ हो जाएगा, बाकी पकड़े जाएंगे, ना, सब पकड़े जाएंगे। अल्लाह मसलकों के ठप्पों से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये फ्रॉड मसलक परस्तों ने ही अपने अपने मसलक को हाईलाइट करने के लिए और अपने अपने फिरके की मार्केट चमकाने के लिए बड़े बड़े पैकेज दिए हुए हैं। वो कहते हैं बाज बेवकूफों ने मस्जिद बनाई अपने पास से, तो वो जरा बंदे अच्छे नहीं थे, तो उस मस्जिद में आता कोई नहीं था, तो उन्होंने पैकेज दिया आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या पैकेज दिया, उन्होंने लिख दिया हमारी मस्जिद का पैकेज ये है कि नमाज ईशा दो रकात होती है और बगैर वजू के भी हो जाती है यहां पर, لوگوں کو آسانی دے تاکہ مسجد میں آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھے، ایسے ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی، نماز ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے بتائی ہے. قیامت کے دن فیصلہ انہی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھ کر ہوگا جو قرآن نے بیان کی ہوئی ہیں. فرقہ پرست اپنے اپنے فرقے چمکانے کے لیے جو پیکج دیتے ہیں اپنی عوام کو کہ یوں تم جنت میں جاؤ گی اور یوں چٹکی بجے گی اور یہ ہو جائے گا اور یوں آگے سے آ کر تمہیں چھڑوا لیں گے، یہ سب لغویات ہیں جو خلاف قرآن ہیں. قرآن مجید کی آیات کو جس نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اس قسم کے بیہودہ جو اٹریکشن کے لیے پیکجز دیے جاتے ہیں دین فروشوں کے ذریعے سے، ان کے دھوکے میں وہ نہیں آتا جس نے اللہ کی کتاب سے ہدایت طلب کی ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا شدید بڑا سخت ہے. آیت نمبر 9، اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. تم مال کی محبت میں پاگل ہو رہے ہو، خدا کے اپنے رب کے ناشکرے بنے ہوئے ہو، کیا اسے معلوم نہیں جب جو قبروں میں ہے اسے اٹھایا جائے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ سمجھتے ہو مر کے ختم ہو جاؤ گے؟ توجہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں جا رہا ہے، جو بھی مر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کو اٹھا کر باہر نکال دیا جائے گا. کیا کرو گے اس دن؟ مال کام آئے گا تمہارے، مال کی محبت کام آئے گی تمہارے. کیا اسے معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں؟ آیت نمبر 10، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے حاصل کر لیا جائے گا، یعنی سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جائے گا، کلیکٹڈ ہوگا، آلریڈی ریکارڈڈ ہوگا، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، اندر کے راز بھی باہر آ جائیں گے. آیت نمبر 11، جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن یقیناً خبیر ہوگا. خبیر کہتے ہیں جسے ہر چیز کی خبر ہو اور اس کی خبر دائمی ہو، کبھی بھی بے خبری کا شکار نہ ہوتا ہو کسی چیز کے بارے میں، اسے کہتے ہیں خبیر. تو جب وہ خبیر جو آج بھی تمہارے بارے میں خبیر ہے، اس دن بھی وہ خبیر ہوگا، اور وہی تمہیں یہ خبریں دے رہا ہے، وہی تمہیں اس دنیا کی مال کی محبت تم سے جو خرابیاں کرا رہی ہے اس سے نکالنے کی نصیحت کر رہا ہے. جب اس کے سامنے جاؤ گے اور اس کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال کر اس مال کی محبت میں تم نے اس رب کی ناشکری اور نافرمانیاں کی ہوگی، اسے کیا جواب دو گے؟ جبکہ وہ تمہارے دلوں کے اندر کے راز بھی نکال کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. آج کے درس کو یہاں پر تمام کرتے ہیں. سورة العادیات کے بعد سورة القارعہ ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.